શ્રવણ બેલગોલામાં પૂજ્ય ભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈનું તારીખ 30/12/85 સમયસાર ગાથા 6 પર પ્રવચન, સડંગ પ્રવચન નંબર 114.
શુદ્ધ આત્મા કા સ્વરૂપ ક્યા હૈ વો બતાને કા અધિકાર હૈ. 38 ગાથા તક શુદ્ધ આત્મા કા સ્વરૂપ કી ચર્ચા ઇસમે હૈ. ઉસમે એક છઠ્ઠી ગાથા હૈ, છઠ્ઠી ગાથા કે ઉપર એક મથાળા હૈ. પ્રશ્નકાર પ્રશ્ન કરતે હૈ કે આપને જો કહા કે મેં એકત્વ વિભક્ત આત્મા કી બાત કહુંગા, એકત્વ યાને અનંત ગુણ સે જો એક રૂપ આત્મા એકત્વ હૈ, એકપણા હૈ જિસમે, જિસમે અનેકપણા નહીં હૈ. અનેકપણા પરિણામ મેં હોતા હૈ. દ્રવ્ય સ્વભાવ અનાદિ અનંત એક રૂપ રહેતા હૈ, અનેક રૂપ હોતા હી નહીં. એસે આપ જો ભક્ત આત્મા કી બાત મેં કહુંગા, યાને પરિણામ માત્ર સે વિભક્ત નામ આત્મા ભિન્ન હૈ. અને અપને જ્ઞાન ઓર આનંદ એસે અનંત ગુણ સે આત્મા અભિન્ન હૈ. એસી બાત કહેને કા આપકા જો ભાવ હુઆ હૈ, યાને આપને વ્યવસ્થા એસા કિયા હૈ કે મેં એકત્વ વિભક્ત આત્મા કી બાત કહુંગા. કામ ભોગ બંધન કી કથા તો અનાધિકાર સે આત્મા સુનતે આયા હૈ, ઉસકા પરિચય ભી હૈ ઓર ઉસકા અનુભવ ભી હૈ. અશુદ્ધ આત્મા કા અનુભવ તો અનાધિકાર કે હૈ, મગર યે આત્મા હૈ યે પુણ્ય પાપ કા પરિણામ સે ભિન્ન હૈ, અપના ગુણ સે અભિન્ન હૈ. એસા જો આપને વ્યવસાય ક્યા તો મેરે હૃદયમાં એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન હોતા હૈ કે એસે શુદ્ધાત્મા, એસા શુદ્ધાત્મા જો હૈ વો કોણ હૈ, યાને કેસા હૈ. એક પ્રશ્ન, જો આપ આત્મા કી બાત કહેને કા ભાવ આયા હૈ તો એસા શુદ્ધાત્મા કા સ્વરૂપ ક્યા હૈ, કોણ હૈ, યાને શુદ્ધાત્મા કા સ્વરૂપ કૈસા હૈ. એક વાત, ઓર ઇસકા સ્વરૂપ જાણના ચાહીએ, યાને અનુભવ મેં લેને ચાહીએ, લેના ચાહીએ. શુદ્ધ આત્મા કા સ્વરૂપ ક્યા હૈ ઓર અનુભવ કેસે હો સકતા હૈ. મેરે કો અનંતકાળ સે રાગ કા તો અનુભૂતિ હૈ, રાગાનુભૂતિ તો હૈ મગર જ્ઞાનાનુભૂતિ પ્રગટ, આજ તક આનંદ કી અનુભૂતિ આયા નહીં હૈ. દુઃખ કા વેદન તો અનંતકાળ સે મેં કર રહા હું, અભી દુઃખ કા વેદન કરતે કરતે મેં થક ગયા હું. તો દુઃખ કા વેદન છૂટ જાવે અને આનંદ કા વેદન આવે. મેં મુનિ તો નહીં હું, મેં ગ્રસ્ત હું. ગ્રસ્ત અવસ્થા મેં રહેતે હી મેં પ્રશ્ન પૂછતા હું, તો ક્યાં ગ્રસ્ત અવસ્થા મેં શુદ્ધાત્મા કા સ્વરૂપ અનુભવ મેં આ સકતા હૈ કે હા શુદ્ધાત્મા કા અનુભવ આ જાતા હૈ. તો પહેલા ગુણ સ્થાન મેં સે ચોથા ગુણ સ્થાન અવિરત સમ્ય દ્રષ્ટિ કહા જાતા હૈ. તો આત્મા કા સ્વરૂપ ક્યા હૈ ઓર ઉસકા અનુભવ કા પ્રકાર ક્યા હૈ, વિધિ ક્યા હૈ, દો પ્રશ્ન એક સાથ મેં શિષ્ય ને જિજ્ઞાસારાપૂર્વક કહા પૂછા. નવ તત્વ કા ક્યા સ્વરૂપ હૈ, છ દ્રવ્ય કા ક્યા સ્વરૂપ હૈ, લોક કા ક્યા સ્વરૂપ હૈ, સ્વર્ગ કા નરક કા ક્યા સ્વરૂપ હૈ, એસા પ્રશ્ન પૂછા નહીં હૈ. આત્માર્થી જીવ બનકર केवल मात्र आत्मा की उपलब्धि का प्रयोजन मात्र है, और कोई मेरे को चाहिए नहीं। ऐसे जिज्ञासा वाला शिष्य प्रश्न उठता है, उसको आचार्य महाराज निष्कारण करुणा करके जो मेरा गुरु परंपरा से मेरा गुरु ने मेरे पर करुणा करके मेरे को उपदेश दिया था शुद्धात्मा का, और शुद्धात्मा का बात सुनकर मैंने भी शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया है, तो ऐसी परंपरा ऋषभदेव भगवान से लगातार महावीर पर्यंत ऐसा प्रश्न करने वाला था अने उत्तर देने वाला भी तीर्थंकर भगवान। वो तो दिव्य ध्वनि है, उसकी क्रमिक वाणी आता ओंकार ध्वनि में। भरत महाराजा ने प्रश्न पूछा, ऋषभदेव भगवान ने छठी गाथा का प्रश्न वहां ही पूछा था, छठी गाथा का उत्तर ऋषभदेव भगवान ने दिया था, और भगवान महावीर ने महावीर को गणधर भगवान गौतम गणधर ने वही प्रश्न पूछा था कि शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है बताओ कृपा करके। ऐसे जब विचार करता है तो वाणी उसमें छूट जाती है, शुद्धात्मा का स्वरूप आ जाता है। ऐसे अपने को जो बात करता है ऐसा वहां व्यवहार नहीं है, मन के अंदर विकल्प उठता है शुद्धात्मा का स्वरूप जानने का गणधर भगवान को, तो शुद्धात्मा का स्वरूप उद्दीव ध्वनि में आ जाता है। गणधर भगवान उदिल कर अनुभव करता है तो बाद में वो परंपरा शास्त्र की गणधर भगवान के द्वारा द्रव्य शुद्ध की एक प्रभावना होती है। ऐसा परंपरा आज भी कोई जिज्ञासु जीव ज्ञानी के समीप जाते हैं तो ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ये मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चा ओरिजिनल स्वरूप, अकृत्रिम भेड़ शेड़ बिना की चीज जिसमें मिलावट न हो, चोखा शुद्ध घी जिसमें वेजिटेबल का मिक्स न हो, ऐसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है कृपा करके मेरे को बताओ। तो उसका उत्तर में गाथा आई है, गाथा अपूर्व है, सम्यक दर्शन अनुभूति में निमित हो जाए ऐसी अपूर्व गाथा है। दृष्टि का विषय भी है, दृष्टि भी प्रकट होती है, दृष्टि प्रकट होती है सम्यक दर्शन, उसके साथ साथ वही समय समय ज्ञान प्रकट होता है, वो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो क्या उसमें होता है। वो दो बात इसमें पहले पारे में दृष्टि प्रधान कथन से बात किया, दूसरा पारामा यही गाथा में एक ज्ञान के द्वारा भी आत्मा का स्वरूप क्या जानने में आता है सम्यक दर्शन के काल में, और सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान में क्या प्रवृत्ति होती है, सो दो बात इसमें अपूर्व है। तो टीका आपने को थोड़ी चली थी कि यह आत्मा है, इस स्वयं सिद्ध पदार्थ है, वस्तु है, अकृति में किसी ने बनाया नहीं है, कोई संयोग से उसकी उत्पत्ति होती नहीं है, कोई संयोग का वियोग से उसका नाश होता नहीं, अनादि अनंत अविनाशी तत्व है, सामान्य तत्व ज्ञायक भाव, वही ज्ञायक भाव सामान्य स्वभाव वैसा का वैसा रहने पर भी अनादि काल से जो ज्ञायक की दृष्टि जिसने नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जीव संसार अवस्था में पर्याय रूप से परलक्ष से प्रणमता है, तो उसकी दशा में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का परिणाम उत्पन्न हो रहा है अनादि से। ये आत्मा अनादि का है, ऐसे मिथ्या दर्शन भी अनादि का विपरीत मान्यता विपरीत अभिनिवेश, जो जैसा स्वरूप शुद्धात्मा का है ऐसा न मानकर वो जीव तत्व संबंधे विपरीत मान्यता करता है उसका नाम संसार है। ये संसार की अवस्था भी अनादि काल की है, मगर वो संसार की अवस्था अनादि शांत हुआ है, माने आत्मा अनादि अनंत है। अनादि शांत यानी अनादि काल से समय समय करके एक एक समय की भूल है, एक एक प्रत्येक समय में वो भूलता है। तो मिथ्या दर्शन चारित्र का विपरीत परिणाम प्रकट होता है संसार अवस्था में। तो अनादि काल से आज तक ऐसी स्थिति है, मगर संसार अनादि अनंत नहीं है। अनादि का होने पर भी संसार का अभाव हो जाता है। संसार कहां रहता है? संसार कुटुंब में नहीं रहता है, संसार पैसा में नहीं है, संसार संयोग में नहीं है, संसार अपनी एक विपरीत अवस्था का नाम संसार तत्व है, जिसका नाम पुण्य पाप आश्रम ने मंद तत्व कहा जाता है। ऐसी संसार की अवस्था अनादि काल की है। तो अनादि काल से उसकी विपरीत मान्यता राग आदि का निमित्त पाकर उसके साथ अनादि का कर्म का बंध भी अनादि का है। द्रव्य कर्म का बंध भी अनादि काल से संयोग रूप है, संसार संयोगी भाव रूप है, माने कर्म संयोग रूप है। संसार तत्व संयोगी भाव है, उसका वियोग हो सकता है। माने आठ प्रकार का कर्म का संबंध भी अनादि काल का है, वो संयोग है। एक संयोगी भाव है, माने एक संयोग है, संयोगी भाव का भी वियोग हो सकता है, माने आठ कर्म का भी संयोग होने से वियोग हो जाता है। इसलिए अनादि शांत है, अनादि अनंत नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, दर्शन मोह आदि का विक्षय हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनादि काल से आत्मा मिथ्या दर्शन आदि राग रूपे प्रणमता है, तो कर्म का बंध है और सत्ता में कर्म है। आठ प्रकार का कर्म का अभाव हुआ नहीं है, है। एक बात, कर्म की सत्ता सिद्ध किया। दूसरा, जो कर्म की सत्ता है तो कर्म समय समय पर उदय में भी आता है दर्शन में चारित्र में ज्ञानी के लिए, तो उसकी परिणति उसमें वश हो जाती है। उदय के अंदर वो जुड़ जाती है परिणति, आत्मा में उपयोग नहीं लगाकर उसमें लगाता है तो उसकी दशा में फिर से शुभाशुभ भाव भी उत्पन्न होता है पर्याय में। और शुभाशुभ भाव उत्पन्न होता है तो फिर से नया कर्म भी बंधता है, नया कर्म बंधता है। ऐसी स्थिति होने पर भी जो नया कर्म का बंध का कारण जो शुभाशुभ भाव है, उस समय भी वो जो ज्ञायक एक भाव है उसका द्रव्य की स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर वो ज्ञायक भाव शुभ अशुभ भाव रूप होता ही नहीं। सूक्ष्म बात है, वेद ज्ञान की बात है, द्रव्य और पर्याय का बीच में वेद ज्ञान की बात है। जड़ कर्म तो निमित्त रूप पृथक है, शरीर भी आत्मा से जुदा है, वो आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय में आया नहीं है। कर्म ने नो कर्म ने सारा विश्व तो ज्ञेय है, અને પર્યાય માત્ર હે હે, અને શુદ્ધ આત્મા ઉપાદેય હે. તો આચાર્ય ભગવાન ફરમાતે હૈ કે અનાદિકાળ સે તેરી દશા મેં તેરા કારણ સે, તેરા તેરી ભૂલ સે, તેરા અજ્ઞાન સે શુભાશુભ ભાવ ઉત્પન્ન પર્યાય મેં પ્રગટ હોતા હૈ. પરિણામ કહો, અવસ્થા કહો, હાલત કહો, દશા કહો, પર્યાય કહો, એકાર્થવાચક બધા શબ્દો હૈ. તો પર્યાય મેં દોષ હૈ, પર્યાય મેં મલિનતા હૈ, તેશે આત્મા ત્રિકાળી આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ હૈ, એસે પર્યાય શુદ્ધ નહીં હૈ, મગર શુદ્ધ હો શક્તિ હૈ, હૈ નહીં મગર શુદ્ધ હો શક્તિ, ગભરાને કી જરૂર નહીં હૈ. તો પરિણામ મેં મલિનતા હૈ, ઓ જૂના કર્મ કા ઉદય નિમિત્ત અને શુભાશુભ ભાવ નૈમિત્તિક એસી દશા હૈ. ઓ શુભાશુભ ભાવ નિમિત્ત ઓર નયા કર્મ કા બંધ કા નામ નૈમિત્તિક, એસી દશા હોને પર ભી ઓ જો જ્ઞાયક ભાવ હૈ, ઓ શુભ અશુભ પુણ્ય ને પાપ કા પરિણામ, ઓ પરિણામ રૂપ હો શકતા નહીં, અપના નિજ ભાવ કો છોડતા નહીં હૈ, અને પરિણામ મેં હો જાતા નહીં હૈ. પરિણામ હોને પર ભી શુભ ઓર અશુભ વ્રત અવ્રત કા પરિણામ હોને પર ભી પુણ્ય પાપ કા પરિણામ હોને પર ભી આ પુણ્ય આશ્રવ ને પાપ આશ્રવ કી ઉત્પત્તિ પર્યાય મેં હોને પર ભી ઓ જીવ તત્વ હૈ, ઓ આશ્રવ રૂપ હોતા નહીં હૈ, અને આશ્રવ જીવ રૂપ હોતા નહીં હૈ. વહાં તક અપને આયા થા, કલ જરા જલ્દી સે લિયા થા, તો આજ જરા ધીમે ધીમે, શાંતિભાઈ ને કહા જરા ધીમે ધીમે, એના ગાડી ફાસ્ટ ચલતી હૈ ને કભી કભી, ક્યા કહા, આ એ તો અપના કેવળ હિત કરને કી બાત હૈ, બહાર દેખને કી બાત, આત્માર્થી કા લક્ષણ હૈ, તો બહાર દેખતા નહીં અંતર મેં દેખતા હૈ, અંતર મેં દેખને કી ચેષ્ટા કરની ચાહીએ. બહાર કા પદાર્થ કો સંસારી જીવ પુદગલ ધર્મ ધર્મ આકાશ કો જાણને સે અપને કો જ્ઞાન ઓર સુખ હોતા નહીં હૈ. તો પ્રમાણ સે બહાર તો જાણે કી સખત મનાય હૈ, ઓર પ્રમાણ મેં રુકના ઇસકી ભી મનાય હૈ. ઉસકા ખુલાસા ક્યા, જો પ્રમાણ જ્ઞાન કા જો વિષય હૈ, ઓ સામાન્ય વિશેષ આત્મક પદાર્થ હૈ, ઓર શુદ્ધ જ્ઞાન કા જો દો અંશ નિશ્ચય નિર્ણય વિષય વ્યવહાર નહીં હૈ, ઓ સામાન્ય કો વિષય કરને વાલી દ્રવ્યાર્થિક નહીં કહો, શુદ્ધ નહીં કહો કે નિશ્ચય નહીં કહો, અને પરિણામ કો જાણને કી જો હૈ ક્રિયા જિસમે ઓ જ્ઞાન કા ઉસકા નામ વ્યવહાર નહીં હૈ. તો આત્મા સામાન્ય વિશેષાત્મક હૈ, ઉસકો જાણને કે લિયે દો નહીં હૈ, પર પદાર્થ કો જાણને કે લિયે સચમુચ નહીં હૈ, નહીં ઓર પર પદાર્થ કો જાણને સે કોઈ અપની પ્રયોજન કી સિદ્ધિ હોતી નહીં. ઇસલિયે ભલે અપની જ્ઞાન કી સ્વચ્છતા મેં લોકાલોક પ્રતિબિંબ હો તો હો, હમકો કોઈ બાધા આતી નહીં હૈ. જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા જ્ઞાન મેં મલિનતા હતી નહીં, હો તો સહજ જ્ઞાની હૈ, મગર અપના પ્રયોજન કી સ્થિતિ કરને કે લિયે અપના દ્રવ્ય પર્યાય કે અલાવા બહાર કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે લક્ષ્ય કરને જેસી ચીજ नहीं, दूसरा जीव क्या करता है कि क्या नहीं करता है, अपने को इसके साथ कोई भागीदारी नहीं है। भागीदारी हो तो कोई खोटा काम करे तो वहां जाना पड़े कि भाई ये दिवाली के बाद वो अपना डेबिट नोट मेरे को नुकसानी की भागीदारी, भागीदारी तो है ही नहीं। नफा नुकसान की भागीदारी सबके सिर पर है। मैं मेरा परिणाम बिगाड़ू तो मेरे को नुकसान होता है, और मेरा परिणाम सुधरता है तो मेरे को पर्याय अपेक्षा से लाभ हो जाता है। तो बाहर प्रमाण की बाहर जाने की सख्त मनाई है एक बात, और प्रमाण ज्ञान का जो विषय द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है उसमें रुकने की मनाई है। यानी द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु प्रमाण ज्ञान का विषय है वो भी उपादेय नहीं है, वो प्रमाण ज्ञान का जो विषय है वो भी पूज्य नहीं है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान निश्चय नय का विषय भी प्रमाण ज्ञान में है, अने व्यवहार नय का विषय भी प्रमाण ज्ञान में सम्मिलित है। तो प्रमाण ज्ञान में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है, और निश्चय नय में व्यवहार की निषेध करने की शक्ति होने से शुद्ध आत्मा उपादेय हो जाता है, वो पक्षातिक्रांत करके आत्मा का अनुभव हो जाता है, इसलिए निश्चय नहीं पूज्य है। सब आगम का वचन है, मुनिराज का वचन है, किसी का कर की बात नहीं है। प्रमाण ज्ञान का विषय पूज्य क्यों नहीं है, के वो भाव कर्म की क्रिया उसमें रोकने की ताकत प्रमाण ज्ञान में नहीं है। निश्चय नहीं में ताकत है कि मैं गायक हूं, राग से मैं भिन्न हूं, तो राग की क्रिया रुक जाती है, वितराग का प्रकट हो जाता है, अपना कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रमाण में आना, प्रमाण के बाद व्यवहार नहीं का विषय को गौण कर देना, व्यवहार नहीं का विषय का अभाव नहीं होता है, जानने के लिए है मगर लक्ष्य करने जैसी चीज उपादेय नहीं है। तो इधर शुभ और शुभ भाव तो है पर्याय में, तो भी जो देखो समस्त अनेक रूप शुभ शुभ भाव, आत्मा एक रूप है, शुभाशुभ भाव अनेक रूप है, असंख्यात लोक प्रमाण है। शुभ और अशुभ का जो भेद प्रभेद किए जाए तो असंख्यात लोक प्रमाण उसकी संख्या हो जाती है। ऐसे अनेक शब्द कया ने, एक की सामे अनेक, एक उपादेय है, अनेक तत्व उपादेय नहीं है, एक उपादेय है न अनेक जानने योग है, जानने में नहीं छूटता, आश्रय छूट जाता है। परिणाम तो है, परिणाम के बिना आत्मा एक समय रहता नहीं है, मगर परिणाम का लक्ष्य के बिना तो आत्मा रहता है। परिणाम का आश्रय छोड़कर द्रव्य का आश्रय करता है तो आत्मा तो रहता है, परिणाम का ज्ञान हो जाता है, परिणाम का पक्ष छूटता है, परिणाम का लक्ष्य छूटता है, परिणाम का ज्ञान रह जाता है। परिणाम है ऐसा ज्ञान रहता है, ज्ञान में से निकालने की चीज नहीं है, मगर दृष्टि का विषय नहीं है, इसलिए है ये भी द्वेषवाचक शब्द नहीं है, वो उपेक्षावाचक भाव है, उसमें परिणाम प्रति उदास हो जाता है। तो शुभ और अशुभ भाव पर्याय में जो आश्रय तत्व है तेमना स्वभावे परिणम तो नहीं, यानी जो आश्रय तत्व है तो भी जो परम पारिणामिक भाव है वो उदय भाव रूप होता नहीं है, उदय भाव रूप होता नहीं है। शुद्ध आत्मा जो शुभाशुभ भाव जो अशुद्ध है, मलिन है वर्तमान में, अशुद्धता है और शुद्धता भी द्रव्य की है। तो जो शुद्ध द्रव्य सामान्य ज्ञायक भाव है, जिसका आश्रय अवलंबन करने से, भूतार्थ का आश्रय करने से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, तो शुद्ध आत्मा है और परिणाम में अशुद्धता है, तो भी शुद्ध आत्मा अपना शुद्धत्व को छोड़कर अपना नित्य निरपेक्ष शुद्धत्व को छोड़कर सापेक्ष अशुद्धता मई हो जाता नहीं है। तद्रूपो न भवति ओ रूप होता, आत्मा अपना स्वभाव को निज भाव को छोड़ता नहीं है, न आश्रव भाव रूपे कदी एक समय मात्र होता नहीं, हो गया ऐसी भ्रांति हो गई, मैं अशुद्ध हो गया, मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, मैं पापी हो गया, ऐसी तो भ्रांति है, मगर भगवान आत्मा अपना शुद्धत्व स्वभाव को छोड़ा ही नहीं है, मगर मैं शुद्ध हूं ऐसा श्रद्धान और ज्ञान छोड़ दिया, और मैं अशुद्ध हूं ऐसा विपरीत श्रद्धान और ज्ञान कर लिया अपने आप। किसी ने कराया, खुदे कुगुरु शास्त्र ने मिथ्यात्व कराया नहीं है, और सुदेव गुरु शास्त्र वो सम्यक दर्शन करने वाला नहीं है। जब उपादान अपनी शक्ति से अंतर्मुख होकर अनुभव करता है तो सच्चा देव गुरु शास्त्र उसकी पूर्व पर्याय में निमित्त था, तो भूत नहीं गम नहीं से कारण भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान रुजु सूत्र नहीं के स्वरूप देखो तो जब आत्मा की परिणति आत्मा की सन्मुख होती है देशना लब्धि सुनने समय, तब तो उसका लक्ष्य छूट जाता है, आत्मा का लक्ष्य हो जाता है, तो वो कारण नहीं है। कारण कहो तो वो भूत पर्याय में अनुभव के पूर्व देशना लब्धि सुनते थे तो ये गुरु से सम्यक दर्शन हुआ, अरे ये गुरु ने आत्मा दिया, ये गुरु ने सम्यक दर्शन दिया, ये सम्यक दर्शन का दाता है, धर्म का दाता है, मेरा उपकारी, ऐसे सविकल दशा में आकर ऐसा विनय का भाव आता है। अने विनय का भाव जो न आवे तो उसको सम्यक दर्शन भी नहीं है। सम्यक दृष्टि के साधक होने से ओ बाधक तत्व भी उपकार का शुभ राग प्रशस्त राग देव गुरु शास्त्र प्रत्येक आता है, दर्शन का भाव आता है, पूजा का भाव आता है, आता है मगर वो करता नहीं, आता है उसको जानता है, अपने गायक को जानते 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 जो अंश वितराग भाव प्रकट हुआ, थोड़ा अंश राग भी रह गया, उसको जानता है, होने योग होता है उसको जानता है, मैं करता हूं ऐसी बुद्धि छूट जाती है। तो शुभ अशुभ भाव शुद्ध आत्मा अशुद्ध रूपे होता ही नहीं है, तद्रूपो न भवती और रूप होता नहीं, निज भाव छोड़ता नहीं है आत्मा अपना, पारिणामिक भाव और औदयिक भाव रूप होता नहीं है, ऐसे तेमना स्वभाव है, परिणमता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है। कंस में जयचंद पंडित का कंस है कि ज्ञायक भाव से चेतन भाव से जड़ भाव रूप होता नहीं है, शुभाशुभ भाव जड़ भाव है, जड़ यानी स्पर्श गंध वर्ण है, ऐसा पुद्गल स्पर्श नहीं, मगर उसमें स्वपर जानने की शक्ति का अभाव होने से उसको जड़ कहा जाता है। ये सब शास्त्र में है, इस काउंस क्या ने शास्त्र की बात है, संस्कृत में है। ज्ञायक भाव से चेतन भाव से जड़ भाव रूप, जड़ भाव रूप, जड़ भाव रूप भले हो मगर मैं जड़ भाव रूप होता नहीं है, इसका अर्थ ये जड़ भाव की अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं, जड़ भाव का अस्तित्व तो पर्याय में शुभाशुभ है, तो भी मैं उस रूप होता नहीं, मैं रूप रहता हूँ, आश्रव आश्रव रूप रहता है, आश्रव का मैं ज्ञाता हूँ, मगर आश्रव में आत्मबुद्धि छूट जाती है, आश्रव का ज्ञाता रह जाता है। जहां तक परिपूर्ण मोक्ष न हो तहां तक थोड़ा आश्रवमंद अने संवर्ण जरा के साथ होता है, होने योग होता है। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो जाननहार हूं। अपने शुद्धात्मा को जानते जानते सभी कल्पशा में जानते जानते वो परिणाम व्यवहार निकाल जो विषय है वो जाने ला प्रयोजनवान है साधक को। अज्ञानी पास व्यवहार नहीं है, ने केवली पास भी व्यवहार नहीं है, निश्चय नहीं ने व्यवहार नहीं है। शुद्ध ज्ञान प्रमाण का एक अंश है। एक एक धर्म को जानने वाली एक नहीं है, ऐसे अनंत नहीं का समूह का नाम शुद्ध ज्ञान प्रमाण है। और आत्मा में एक एक धर्म है, ऐसे अनंत धर्म का जो स्वरूप है वो अनेकांतिक आत्मा है। एक एक धर्म को विषय करने वाली एक एक नहीं है, अने अनंत धर्म को युगपद विषय करने वाले शुद्ध ज्ञान प्रमाण है। एक समय में आत्मा की सन्मुख हुआ आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञायक का दर्शन हुआ कि मैं तो शुद्ध आत्मा ज्ञायक हूं। तो उही समय द्रव्य का ज्ञान के साथ अनंत धर्म का ज्ञान भी प्रकट साथ में होता है। तो सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत का ज्ञान भी प्रकट एक समय में हो जाता है, नहीं भी एक समय में प्रमाण भी एक समय नई पूर्वक प्रमाण होता है। प्रमाण ज्ञान का जो जन्म होता है वो प्रमाण से नहीं होता है, प्रमाण का विषय का आश्रय से प्रमाण उत्पन्न नहीं होता है, प्रमाण ज्ञान का विषय का लक्ष्य से नहीं होता है। प्रमाण ज्ञान की उत्पत्ति भी त्रिकाली सामान्य स्वभाव का लक्ष्य किया शुद्ध नहीं के द्वारा शुद्धात्मा का अनुभव हुआ। तो एक का अनुभव हुआ तो अनेक का ज्ञान भी उस समय हो जाता है। अचिंत्य है शुद्ध ज्ञान की ताकत, अचिंत्य है। तो यह आत्मा है, शुभाशुभ भाव कभी होता जैसे देह रूप नहीं होता है, ऐसे आत्मा राग रूप होता नहीं है। हो गया हूं ऐसी भ्रांति है, वो तो भ्रांति है, उसका नाम तो अज्ञान है। ज्ञायक भाव से जड़ रूप भाव होता के कारण प्रमद भी नहीं है न प्रद्वंद नहीं। अभी सूक्ष्म बात और आती है, सुनो। इस कारण से कारण दिया कि प्रमद अप्रमद दशा से आत्मा भिन्न है, प्रमद अप्रमद दशा आत्मा में नहीं है। आत्मा में यानी प्रमाण का जो आत्मा विचार में आएगा तो ज्ञान ख्याल में नहीं आएगा, वो शुद्ध नहीं का विषय भूत शुद्ध आत्मा है त्रिकाली सामान्य। उसमें वो त्रिकाली सामान्य तत्व में पर्याय रूप विशेष तत्व का अभाव है, अस्ति नास्ति अनेकांत अंदर में है। अनेकांत का दो अर्थ है, अनेकांत का एक तो चालता जगत की अंदर चालता विषय से देखो तो अनंत धर्मात्मक आखा पदार्थ का जो ज्ञान हो जावे उसका नाम अनेकांत है, वो ज्ञान प्रधान अनेकांत है। मगर ज्ञान प्रधान अनेकांत का जन्म भी दृष्टि प्रधान अनेकांत आत्मा आवे तो ही हो जाता है। ये क्या अनेकांत कि आत्मा शुद्ध है न अशुद्ध नहीं है, आत्मा एक रूप है न अनेक रूप नहीं है, आत्मा ज्ञायक है न प्रमत अप्रमत का इसमें अंदर अभाव है। अस्ति नास्ति अनेकांत, स्व स्वपणे है न परपणे नहीं है ये प्रमाण ज्ञान में तो सारा विश्व की नास्ती है द्रव्य में और प्रमाण ज्ञान और प्रमाण ज्ञान के अंदर आत्मा द्रव्य रूप है ध्रुव है उत्पाद रूप नहीं है उत्पाद व्यय की नास्ती है। तत्वार सूत्र में तो कहा ने कि सद्रव्य लक्षणम बराबर कहा सही है प्रमाण है ज्ञानी का वचन है हमको मान्य है और सत उत्पाद द्रव्योत्तम सत हमको मान्य है और गुण पर्याय वत द्रव्यम हमको मान्य है और पदार्थ की सिद्धि होती है प्रयोजन की सिद्धि प्रमाण में होती क्या कहा मौसमी लाओ तो मौसमी तो आई है मौसमी का रस बीमार को देता है ने तो मौसमी के अंदर रस भी है अंदर में छोटा भी कुचा भी है ने उसमें छिलका भी है तो प्रमाण ज्ञान का विषय हो गया। क्या कहा क्या मौसमी उपादेय है कि एक ही ला रस उपादेय है और दिल्ली वाला भाई का नाम में भूल गया क्या भैया नाम नवीन भाई नवीन भाई अच्छा ऐसे ऐसे युवान भी दिल्ली से आए हैं बोलो देखो तत्व की रुचि वाला मौसमी लाया तो मौसमी लाया तो वो मौसमी का जो वजन है मौसमी का जो वजन है वो तो 100 ग्राम समझो मगर उसमें तो रस तो 10 15 20 ग्राम निकलता है तो कहा जाता है तो मौसमी सचमुच तो जितना रस है वो मौसमी है और छोटा और छिलका पैसा तो दिया पैसा छिलका का नहीं दिया है पैसा रस का दिया है छिलका का पैसा दिया हो तो छिलका भी खाने में काम आवे खाने में काम आता प्रमाण ज्ञान का विषय मौसम्बी है केला भी है समझे मगर रस उपादेय है मौसम्बी में से ये छिलका और छोटा उपादेय नहीं है फेंक देता है। अरे भैया पैसा दिया है फेंक क्यों देते हैं वो लड़का कहे छोटा कि पैसा दिया पप्पा आपने सारी मौसम्बी का वो क्यों फेंक देते हैं भाई फेंकने जैसी चीज है वो भोगने जैसी चीज एकीला रस भोगने जैसी चीज है छिलका और कुचा पुण्य पाप का ये भोगने जैसी चीज नहीं है चैतन्य अंतर्मुख होकर आनंद का रस भोगने की जैसी चीज है। कीमत तो ज्ञान और आनंद की है शुभाशुभ भाव की कीमत जैन दर्शन में कुछ है नहीं कोड़ी की कीमत नहीं है क्योंकि वो तो आकुलता का उत्पन्न करने वाला आश्रव है। आश्रव चाहिए तेरे को के आत्मा चाहिए जिसमें जिसका ग्रहण करने से आत्मा दुखी हो जाए। भंडारी जी जो परिणाम ग्रहण करने से आत्मा दुखी हो जाए वो परिणाम करने जैसा है कि जो परिणाम आत्मा की अभिमुख और अंदर में आनंद अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आवे ये परिणाम संवर निजरा का प्रकट करने योग ओ संवर निजरा का लक्ष्य से संवर निजरा प्रकट नहीं होती है। ओ संवर निजरा का जिसमें अभाव है ऐसा ज्ञायक का लक्ष्य करने से स्वयं संवर निजरा प्रकट होती है वो प्रकट करने के लिए उपादेय है आश्रय करने के लिए यही है। तो इसमें शुभाशुभ रूपे परिणमता नहीं है कारण दिया पुण्य पाप आश्रव बंध रूपे परिणमता आत्मा नहीं है होता नहीं इसलिए वो आश्रव बंध का अभाव पूर्वक होने वाली जो संवर निरा मोक्ष की अप्रमत दशा वो रूप भी आत्मा होता। सूक्ष्म बात है कारण दिया कि जो आश्रव रूप होता नहीं है तो आश्रव का अभाव पूर्वक होने वाली संवर की अवस्था और रूप आत्मा होता नहीं है और जो भावबंध है उसका अभाव पूर्वक होने वाली जो मोक्ष की पर्याय जो अप्रमत का भेद है भावबंध प्रमत का भेद है અને ભાવ મોક્ષ અપ્રમત કા ભેદ હે પ્રકાર. સંવર નિદ્રા ભી અપ્રમત કા ભેદ હે ઓર આશ્રવ બન પુણ્ય પાપ પ્રમત કા હે ભેદ. તો એ જો અશુદ્ધ રૂપ હોવા નહીં હે તો અશુદ્ધ કા અભાવ રૂપ હોને વાલી સાપેક્ષ શુદ્ધતા ઉસ રૂપ ભી આત્મા હોતા નહીં. આત્મા ઔદયિક ભાવ રૂપ હોતા નહીં. આત્મા ઉસમક્ષાયિક ભાવ રૂપ હોતા નહીં. જો અપના નિજ ભાવ છોડતા નહીં હે ઓ મેં હું આહા. જો પરિણામ મે જાતા નહીં હે. દ્રવ્ય સ્વભાવ સામાન્યમાં વિશેષ કી નાસ્તી હે એસી અસ્તિ હે. ક્યા કહા? સામાન્ય મે વિશેષ નામ પ્રમત અપ્રમત દશા ચૌદ ગુણ સ્થાન વિશેષ પર્યાય હે. પર્યાય પર્યાય રૂપ હે. પર્યાય કા તુચ્છ અભાવ હે. સસલા કા સિંગરા જેસી ચીજ નહીં હે. હે પરિણામ હે મગર પરિણામ વિશેષ સામાન્ય મે ઉસકી નાસ્તી હે. એસી અસ્તિ રૂપ જો આત્મા હે ઉસકા લક્ષ કરને સે નિર્વિકલ્પ ધ્યાન આ જાતા. પરિણામ કા લક્ષ કરકે કભી સમ્યક દર્શન પ્રગટ નહીં હોતા હે. ઓર પરિણામી કા લક્ષ કરને સે ભી સમ્યક દર્શન પ્રગટ નહીં હોતા હે. અપરિણામી કા લક્ષ કરને સે પરિણામી કા જ્ઞાન હો જાતા હે. પરિણામ કા જ્ઞાન હો જાતા હે. અભી દૂસરા પારામાં હું આવેગા. આ એ છઠ્ઠી ગાથા તો એસી હે કે દિવસોના દિવસો ઉસકા ગોલન કરે. ગોલન સમજે એકલા સુનને કી બાત નહીં હે. ઇધર જો ધાર્મિક પ્રવર્તન હે ભંડારજીને લગાયા હે ને આત્માર્થી કે લીએ. આત્માર્થી શબ્દ બોલે થે ને. આત્માર્થી જીવ કા અર્થ એ હે કે કેવળ આત્મા કા કામ હે. કોઈ 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 દૂસરા મેરા કાર્ય હે નહીં. તો આત્માર્થી જીવ કે લીએ તો ભેદ જ્ઞાન. ભેદ જ્ઞાન કા દો પ્રકાર હે. એક સવિકલ્પ ભેદ જ્ઞાન અને એક નિર્વિકલ્પ ભેદ જ્ઞાન. તો સવિકલ્પ ભેદ જ્ઞાન મેં આત્મા કા નિર્ણય હોતા હે ઓર અભેદ કા અનુભૂતિ સે આત્મા કા અનુભવ હોતા હે. ભેદ જ્ઞાન મેં આચાર્ય મહારાજ બતા દે કે તેરી દશા મેં ભલે શુભાશુભ ભાવ હો મગર તેરા આત્મા શુદ્ધત્વ કો છોડકર અશુદ્ધ રૂપ હો સકતા નહીં. ને હુઆ ભી નહીં ને હોગા ભી નહીં. ઓ બાત તો ઠીક હૈ. ઇસલિયે પ્રમત દશા આત્મા સે બાહ્ય હૈ મગર ઉસકા અભાવ પૂર્વક જો શુદ્ધતા પ્રગટ હોતી હૈ પ્રમત દશા કી વો ભી આત્મા મે નહીં હે. ઓ ધર્મ પરિણામ કા ધર્મ હૈ. ઓ ધર્મી કા ધર્મ નહીં હૈ. સંવર નિરા ને મોક્ષ ધર્મ કા પરિણામ હૈ. પર્યાય કા ધર્મ હૈ. પર્યાય અપેક્ષિત ધર્મ હૈ. અને ભગવાન જો આત્મા અનાદિ અનંત એક રૂપ ને શુદ્ધ જ્ઞાયક તત્વ ચિદાનંદ હૈ ઓ જો ધર્મી હૈ. ધર્મી યાને અનંત ગુણ કો જો ધારી રાખે એસા ગુણી પરમાત્મા ઉસકા નામ ધર્મી હૈ. ઓ જો ધર્મી હૈ ઓ જો સ્વભાવવાન હૈ ઉસકા સ્વભાવ તો પરમ પારનામિક શુદ્ધ આત્મા હૈ. ઓ દ્રવ્ય ને પારનામિક ભાવ ધારી રખા હૈ અને પર્યાય ને એક સમય કી પરાશિત પરિણામ ને ઔદયિક ભાવ ધારી રખા હૈ ઓર સ્વાશ્રી સંવર નિજરા મુખ કી પર્યાય ને એક સમય કી વિતરાગતા શુદ્ધતા કા ધારણ કિયા હૈ. એસી જો વસ્તુ હૈ ઓ શુભાશુભ રૂપ હોતા નહીં હૈ. ઇસલિયે જો પ્રમત રૂપ હોતા નહીં હૈ ઇસલિયે ઓ આત્મા ઉસકા અભાવ પૂર્વક જો વિતરાગ દશા પ્રગટ હોતી હૈ ઉસ રૂપે હોતા નહીં હૈ. એક પરમાત્મ પ્રકાશ મેં દૃષ્ટાંત આતા હૈ કે જો આત્મા હૈ वो अनादि अनंत मुक्त है, बंधा ही नहीं है, समझे। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि जो आत्मा बंधा ही नहीं है तो मोक्ष का और मोक्ष मार्ग का उपदेश करना निरर्थक हो जाएगा। हमको तो लगता है कि आत्मा अनादि काल सा बंधा हुआ है, आचार्य भगवान के तेरा आत्मा बंधा हुआ नहीं है। तो शिष्य कहते हैं कि तो ये उपदेश मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का उपदेश निरर्थक हो जाएगा। तो आचार्य भगवान उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं, कहे भैया सुन, वो आत्मा की बात सीधी तेरा ख्याल में आने आएगा, नहीं थोड़ा दृष्टांत दो तो ख्याल में आवे। कि सुन, दो आदमी है, तो एक आदमी तो जेल में गया, जेल में गया, जेल का बंधन हुआ और जेल में से छूटा, जेल में से छूट गया। तो जो बंदा है न जेल में से छूटा, तो वहां उसका रिश्तेदार भाई मित्रों मंडल बजा खुशहाली के लिए वहां जाते हैं, तो उसको चाय पानी भी दूध आदि वगैरह फल आदि देते, आवकार देते हैं प्रशंसा करने के लिए, छूटा हम खुशी हुआ, समझे। और दूसरे दिन वो आदमी के पास वो सब गया कि जो बंधा ही नहीं था, तो उस वहां जाकर जेल के अंदर से आप छूट गया, वो अभिनंदन देने को मैं हम आया हूं सब में, क्या बात है, गुस्सा हो गया उसको, क्या बात है, मैं बंधा ही नहीं, जो बंधता है सो तो छूटता है, मगर जो बंधा ही नहीं, मैं तो जेल में गया ही नहीं कभी, तो छूटने की बात हमारे लिए लागू पड़ती नहीं है, समझ में आया। वो दृष्टांत है, दिगंबर आचार्यों ने बात कोई अपूर्व है, श्रीमद राजचंद्र जी हो गया, उसने लिखा है कि दिगंबर आचार्यों ने जो बात है वो बहुत सूक्ष्म ने दिखी होने से परिणति अंतर सन्मुख हो जाती है, अने श्वेतांबर में वो शिथिल हो गई बात, तो उसमें वस्तु प्राप्त होता नहीं है। जो मुनि हो उसको भी हम नमस्कार, वर्तमान मुनि को नमस्कार तो करते हैं। त्रिकालवर्ती अर्यंतान त्रिकालवर्ती सिद्धान, त्रण काल में भूत भविष्य ने वर्तमान अर्यंत नमस्कार करूं छो, डबल में पाठ। तो मुनि की दशा है, साधु जी की दशा है, जो निरंतर आत्मा की साधना में रत रहता है, शुद्ध उपयोग नाम का मुनि है, उपयोग शुद्ध उपयोग लक्षण जिसका है, ऐसा मुनिवर को नित्य नमस्कार मैं करता हूं। तो आचार्य महाराज फरमाते कि तेरा आत्मा मुक्त है, तो उसको बैठानी बात कि कभी मुक्त हूं कि अभी अभी मैं मुक्त हूं, अमुक्त है, तो उसको दृष्टांत दिया कि देख दो भाई, इसमें एक जेल में गया तो छूटा, तो अभिनंदन के पात्र है, एक तो जेल में गया ही नहीं तो छूटने का प्रश्न है ही नहीं। तो दो बात इसमें है कि एक आत्मा है ने एक परिणाम है, परिणाम में बंध होता है, परिणाम का मोक्ष होता है, मगर भगवान जो आत्मा है वो तो त्रिकाल मुक्त है, बंधा ही नहीं, तो छूटने का प्रश्न ही उसमें है नहीं। जो बंधता नहीं ने छूटता नहीं है, त्रिकाल मुक्त है, वो मैं हूं, वहां दृष्टि लगाने से निर्विकल ध्यान आ जाता है, और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो गया ऐसा। तो ये जो गाथा है वो त्रिकाल मुक्त की है, बंध और मोक्ष से रहित है, प्रमत अप्रमत दशा से आत्मा भीन है, रहित है, मगर परिणाम मात्र से रहित इसमें लिखा, बाद में जब दूसरा पारा आएगा इसमें लिखा केवल ज्ञान से रहित आत्मा है, दूसरा पारा में लिखेगा कि शुद्ध ज्ञान से आत्मा सहित है। ऐसे श्यादवाद है रहित और सहित की रमत है, एकांते रहित भी नहीं ने एकांते सहित भी, कथनचित रहित ने कथनचित सहित। तो दूसरा पारा में खास खुलासा आएगा, ऊपर ऊपर से तो विरोध लगेगा कि केवल ज्ञान से रहित पहले पारा कहा, वो दूसरा पारा में शुद्ध ज्ञान से सहित कहा, ये क्या बात है। ओश्यादवाद की कोई लीला अपूर्व है, श्यादवाद जिसने जाना उसने आत्मा का अनुभव कर लिया, कोई एकांत का दोष उसमें आता नहीं है। तो ज्ञायक भाव ते थी ते कारण उस लिए जो शुभाशुभ रूपे होता नहीं है, इसलिए प्रमद भी नहीं है और उसका अभाव पूर्वक अप्रमद दशा भी उसमें नहीं है। परिणाम का धर्म परिणाम में है, मगर परिणाम का जो धर्म है उदय उपशम क्षय क्षोभम ए पारिणामिक भाव लक्षण वाला नित्य शुद्ध नित्य मुक्त आत्मा में वो है नहीं, लक्षण से लक्षित होता है। औदयिक भाव लक्षण से पर्याय लक्ष्य होती है, उपशम भाव लक्षण से शुद्ध पर्याय लक्षित होती है, शोपशम लक्षण से शुद्ध पर्याय लक्ष्य होती है, आचरण रूप उपयोग रूप सामान्य उपयोग शोपशम नहीं, और शायिक लक्षण से पर्याय का ज्ञान होता है, शायिक लक्षण से द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो द्रव्य का लक्षण ही नहीं है, शायिक भाव पर्याय का लक्षण है। थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास बिना गुरुदेव फरमाते थे कि सेठिया आखो दिवस 24 कलाक पाप मां जाए, अर्धो कलाक कलाक जाए ता कुदेव कु गुरु शास्त्र लुटी ले। ओ ए तत्व की अभ्यास की, अरे अनुभव के पहले जो तत्व का अभ्यास करता है उसको भी आत्मा की झांकी आ जाती है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, क्षायिक लक्षण मेरा नहीं है, इसलिए वो परिणाम उपादेय नहीं है, वो परिणाम जीव तत्व नहीं है, जिसमें पारिणामिक भाव लक्षण है वो जीव तत्व है, जिसमें क्षायिक भाव लक्षण है वो पर्याय है, वो पर्याय समयवर्ती नाशवान है, भले मोक्ष की पर्याय हो तो भी एक समयवर्ती है, त्रिकालवर्ती भगवान आत्मा त्रिकालवर्ती है, पर्याय क्षणवर्ती है, विनाशिक है। तो ये आत्मा है श्रद्धा का विषय, श्रद्धा में आए बिना उपयोग आत्मा के सन्मुख आता ही नहीं है। जैसी श्रद्धा उस तरफ प्रणति जाती है, जैसे देह मारा तो देह प्रति जाता है, कुटुंब मारा तो मारापणा की श्रद्धा है, मारा के पणा की श्रद्धा है, जहां श्रद्धा है यहां उपयोग जाता है, रुचि अनुयायी वीर्य, और पैसा में सुख लगा है श्रद्धा में तो उपयोग बार बार पैसा कमाने में जाता है, क्यों है कि वो जो श्रद्धा है वो श्रद्धा बलवान होती है, क्योंकि श्रद्धा निर्विकल्प है, निर्विकल्प होने से बलवान है, ज्ञान सविकल्प होने से इतना बलवान नहीं है, बलवान तो है मगर इतना बलवान, क्योंकि ज्ञान भेदा भेद को विषय करता है, श्रद्धा एक हीला अभेद सामान्य को विषय करता है। तो श्रद्धा का बल से सिद्ध भगवान क्यों संसार में नहीं आते, श्रद्धा का बल है, लिखा है ने सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान रागादि रूपे प्रणमता नहीं, उसका क्या कारण है, तो कोई तर्क करे कुतर्क, कुतर्क के वहां कर्म का उदय नहीं, इसलिए रागादि रूप प्रणमता नहीं, उसकी नजर कहां गई, प्रमाण से बाहर गया, प्रमाण से बाहर गया। तो रागादि पे क्यों परिणमता नहीं है, उपादान पर नजर जिसकी है वो ज्ञानी लिखते हैं कि श्रद्धा का बल है, इसलिए राग रूपे परिणमता नहीं है, उपयोग अंदर में से छूटता ही नहीं है। केवल ज्ञान का उपयोग, उपयोग का दो प्रकार वहां नहीं है। साधक के अंदर परिणति और उपयोग दो प्रकार है। शुद्ध ज्ञान के अंदर दो भेद है, अतीन्द्रिय ज्ञान ने इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान में लब्ध और उपयोग दो भेद है, मगर केवल ज्ञान तो क्षायिक हो गया, उपयोग बाहर जाने का प्रश्न है नहीं, अंतर में लीन हो गया। और उपयोग की स्वच्छता ऐसी है, दर्पण बड़ा कि लोकालोक उसमें जलकता है। तो भी एक ज्ञानी है, एक ये है नहीं, ज्ञानी दिखने में आता, ज्ञाकार ज्ञान दिखने में आता है, ये जिसमें प्रतिबिंब होता है ऐसा ज्ञान को मैं देखता हूं, बिंब को मैं देखता नहीं हूं। गायक की ओर नजर होने से लोकालोक उसमें स्वच्छ ज्ञान में जलक जाता है। जलकना वो दोष बिल्कुल है नहीं। तो जाता है तो फिर वहां पर जो ज्ञान की सीमा बढ़ती जाती है, अभी सीमा छोटी है, इतनी छोटी है कि हम अपने एक क्षेत्रावगाही होते हुए शरीर और आत्मा, फिर भी हम वहां तक भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वहां पर आवरण है ना। इस आवरण को हम जब तक दूर नहीं करते हैं तब तक न लोकालोक झलकता है, लेकिन उसमें भी जैसे अभी बताया गया कि मुक्तावस्था में हो या मुक्तावस्था के पहले भी हो, लेकिन हर अवस्था में आत्मा तो मुक्त रूप ही है, अर्थात बंधन से रहित है, लेकिन फिर भी हम बंधन को समझते हैं, ये बंधन है ये बंधन है, लेकिन आत्मा कभी बंधन में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है ना किसी अन्य द्रव्य के साथ अन्य द्रव्य के रूप में होने का उसका स्वभाव नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर कदापि इस संसार से मुक्ति हो ही नहीं सकता। तो जो पुद्गल का स्वभाव है वो तो पुद्गल रूप है, आत्मा का जो स्वभाव है वो आत्मरूप है, दोनों ही भिन्न भिन्न द्रव्य है, फिर भी बंधन है। बंधन इसलिए हम लोगों को महसूस होता है ना कि हम बंधन में हैं, शरीर के बंधन में हैं और संसार के बंधन में हैं, कुटुंब के बंधन में हैं, समाज के बंधन में हैं, देश के बंधन में हैं और कुछ रीति रिवाजों के बंधन में हैं। ऐसा महसूस करते ही रहते हैं कि हम बंधन में हैं, हम बंधन में। इसका कारण क्या है कि जो है ना उस जो आत्मा की जो विभाव परिणति, आत्मा की विभाव परिणति से ऐसा मानते ही रहते हैं हम, इसलिए ऐसा महसूस भी होता रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने स्वयं आत्मा को जानने की चेष्टा हो रही है तो समझ लीजिए वहां पर कोई बंधन नहीं है। इस शरीर में रहते हुए भी वो बंधन से मुक्त है, इस कर्म के आवरण में रहते हुए भी वो मुक्त है उससे। इसलिए कहा कि द्रव्य जो जीव द्रव्य है वो कदापि पुद्गल द्रव्य हो नहीं सकता, किसी भी द्रव्य के रूप में हो नहीं सकता, ना आकाश ना काल ना धर्म ना अधर्म ना पुद्गल, किसी भी द्रव्य के रूप में हो नहीं सकता, इसलिए स्वतंत्र ही कहा है उसको। जीव और अजीव दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं, ये बात पहली बार तीर्थंकरों के सरणी में आदिनाथ भगवान को हुआ।
राजमहल में सब बैठे थे, नृत्य चल रहा था, नीलांजना का नृत्य चल ही रहा था। अचानक मृत्यु के कारण दूसरी नीलांजना वहां पर आई, किसी ने गौर नहीं किया और तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसको गौर किया। जब हम गौर से देखते हैं किसी भी स्थिति को तो वहीं पर हमें वास्तविकता की अनुभूति होने लगती है, हम उसके प्रवाह के साथ बह जाते हैं तो फिर कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो वहां पर प्रतिक्षण उनके, उसके पहले उन्होंने गौर नहीं किया लेकिन उस समय गौर किया तो महसूस हुआ सत्य क्या है, प्रकट हुआ। बाकी जितने थे उनको किसी को महसूस नहीं हुआ लेकिन उनको महसूस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। जो व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसका उत्तर भी मिल जाता है, जो व्यक्ति प्रतिक्षण प्रश्न नहीं करता है तो उसकी सत्य की अनुभूति हो नहीं सकती। प्रश्न जरूर करना है, प्रश्न दो तरह के व्यक्ति नहीं करते हैं। एक तो वो है जिनको केवल ज्ञान हुआ तो दोबारा प्रश्न करेंगे नहीं क्योंकि सब कुछ मालूम पड़ जाता है, और दूसरे वो व्यक्ति प्रश्न नहीं करते हैं जिनको बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हम उस दोनों के बीच में हैं, मानव न केवल ज्ञान हुआ न हम पेड़ पौधे तो है ही नहीं, वो किसी से पूछने तो जाते नहीं हैं, लेकिन इस बीच में रहने वाले हम जिसको कहते हैं विवेक प्राप्तवान जीव, इसलिए प्रश्न हो तो उनको प्रश्न हुआ उस प्रश्न के उत्तर उन्होंने पाया। हम किसी भी स्थिति में जब प्रश्न करते हैं तो हमें मालूम होता है। इसके लिए देखिए आज के साइंस में न्यूटन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। न्यूटन जब सेब के फल होता है ना, सेब का फल, उसके पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सिर के ऊपर एक सेब का फल गिर गया। गिरते ही उसने सोचा ये मेरे सिर के ऊपर क्यों गिरा, ऊपर से नीचे क्यों आया, और पेड़ के ऊपर से उधर क्यों नहीं गया, इधर बगल में क्यों नहीं गिरा या इस बगल में क्यों नहीं गिरा, तो ऊपर से नीचे ही गिरा। पहली बार उसके मन में शंका हुई, प्रश्न हुआ कि नीचे क्यों आया। खोजते खोजते उस प्रश्न के पाया उसने, उसके पहले उसने खुद भी गिरा होगा, गिराया भी होगा, पत्थर भी फेंका होगा और सब कुछ किया होगा लेकिन कभी महसूस नहीं किया कि ऊपर से नीचे क्यों आता है। उसने खोजते खोजते ये तत्व को निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसलिए नीचे ही आता है। पहली बार दुनिया को एक संदेश दिया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है इसलिए नीचे ही आता है। तो उसने गौर किया उस समय, तो जिस समय हम गौर से देखते हैं, गौर से जानते हैं, कोशिश करते हैं तो सत्य प्रकट होने लगता है। तो आदिनाथ भगवान ने देखा ऐसी है तो वो शरीर तो दूसरा है, अब दूसरा शरीर यहां आया है तो क्यों है, तो आत्मा इस शरीर से जुदा हो जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है। तो वहां पर महसूस हुआ कि जो है ना मृत्यु नाम की कोई चीज है, और मृत्यु क्या है, शरीर से आत्मा अलग हो जाना, इसी का नाम है मृत्यु। तो तुरंत ही इसको जीतना है, एक भाव आया, इसलिए वहीं से राजगद्दी छोड़कर चले गए। सुना भी होगा आत्मा और शरीर अलग, भेद विज्ञान हो गया लेकिन उसकी साधना में चले गए। हजार वर्ष तक तपस्या करने के लिए बैठ गए तब जो है उनकी परिपूर्णता हुई, हजार वर्ष तक की तपस्या। महावीर भगवान घर छोड़े 12 साल तक की तपस्या हुई, बाहुबली भगवान युद्धभूमि से छोड़कर गए तो 1 साल तक निरंतर साधना करते रहे। इसकी एक प्रश्न आता है के तीर्थंकर प्रभु को, महावीर भगवान को मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है, विधि ज्ञान जन्म जन्मते ही, फिर भी उनको घर छोड़कर 12 साल तक लगा, जो परिपूर्णता के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए, सहज भाव प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सर्वज्ञत्व को प्राप्त करने के लिए या स्थितप्रज्ञ होने के लिए, तो 12 साल लगे। आश्चर्य होता है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों ज्ञान होने को, ते कहते हैं तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है, ये तीनों होते भी आत्मा की परिपूर्णता होती नहीं है, क्योंकि इसका विषय भिन्न है। इसलिए आत्मा में ज्ञान को स्थिर करने का, अपने ही आत्मा में अपने ही ज्ञान का स्थिर करने का जो प्रयत्न, उनको 12 साल लगे। तीर्थंकर होते हुए, चतुर्थ काल होते हुए, तद्भव मोक्षगामी होते हुए, और काल भी अच्छा था, सब कुछ, फिर भी इतना समय लगा उनको। आश्चर्य होता है ऐसे तीर्थंकर। और फिर भी हम सुनते हैं शास्त्रों में वज्र ऋषभ नाराज संहनन, बहुत मजबूत शरीर, वज्र के समान वो भी मिला था उनको, राजकुमार थे, कोई कमी नहीं थी, फिर भी लगा। तो ऐसा लगता है कि उस आत्मा में अपने ज्ञान को स्थिर करने में बहुत बहुत परिश्रम, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। ये तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा के बारे में वास्तविक दृष्टि से, यथार्थ रूप से जाने और कोई प्रश्न न रहे उसमें। ऐसी स्थिति को ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही यह होता है, अन्यथा नहीं होता है। अभी बात चली ना यहां पर कि केवल ज्ञान के बारे में, केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, तज्जयति परंज्योति समम समस्ते अनंत पर्याय ही दर्पण तल प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ज्ञान के वर्णन करने के लिए प्रायः जो सैद्धांतिक हैं, दुनिया में कोई भी हो, सबने इस दर्पण का दृष्टांत लिया है। 4000 वर्ष पूर्व ग्रीक में एक दार्शनिक था, उसने भी ज्ञान को बताने के लिए दर्पण का ही दृष्टांत दिया लिया है। चाइना में एक बहुत बड़ा दार्शनिक, उसने भी दर्पण का ही दृष्टांत लिया है। तो दर्पण के साथ ही ज्ञान का दृष्टांत ठीक बैठता, अन्यथा नहीं बैठ सकता, क्योंकि दर्पण के सामने जो भी वस्तु है वो प्रतिबिंबित होता है, दर्पण देखना पसंद नहीं करता है। तो जो वस्तु सामने है उसके प्रतिबिंबित होना, ये दर्पण का सहज स्वभाव है। और दूसरा, जो भी उसमें होता है, जैसा भी है वो परिणमन हो रहा है, सब वैसे ही उसमें दिखाई देता है। दर्पण के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, और तालाब भी दिखाई देता है, और पहाड़ के ऊपर जलती हुई अग्नि भी दिखाई देती है, लेकिन दर्पण में दर्पण नहीं जला, और पहाड़ का वजन इसके ऊपर नहीं पड़ा, और पानी दिखाई देने से दर्पण गीली भी नहीं। तो तीनों एक साथ दिखाई देने पर भी दर्पण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसी प्रकार तीन लोग को सब कुछ जानने की क्षमता होने पर भी कभी विचलित नहीं होता है, क्योंकि जो है ना, वो दर्पण के समान है। दर्पण स्वयं वस्तुओं को देखना नहीं जानता है, देखना पसंद नहीं करता, या इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार वो तीर्थंकर सर्वज्ञ है या आत्मज्ञ है? तीर्थंकर सारी दुनिया को, तीनों लोकों में जो भी जीव और अजीव के जितने भी परिणमन हो रहा है, त्रिकाल के परिणमन पर्याय बदल रहा है, उसको जानते हैं क्या, देखते हैं क्या? तो कहते हैं कि नहीं, देखने की क्षमता है लेकिन देखते नहीं है, जानते नहीं है। क्षमता होना और देखने का उपयोग करना वो अलग है। तो क्षमता है लेकिन देखते और जानते नहीं, क्यों? अपने ही इसमें आत्मा में स्थिर है ना। तो क्षमता है पूरा तीन लोग जाने की। कोई दुनिया में नरक को देख रहे हैं तो दुख नहीं हो रहा है, मनुष्य को देख रहे हैं कोई चंचलता नहीं हो रहा है, स्वर्ग की विभूति देखते हैं वैभव कर, लेकिन चंचल नहीं होता है। तो वहां पर जानने की मतलब ज्ञान जो है ना, वो परिपूर्ण है, स्वच्छ है, कोई असर नहीं होता है। तो वहां पर शुद्ध विशुद्ध ज्ञान वहां पर होता है, उसी को अभी आपके सामने खुलाई किया है। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करना है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आत्मा को, कि जो भी अपने शरीर में या बाहर दुनिया में जो भी जैसी स्थिति है परिणमन हो रहा है, उसमें अपने ज्ञान को विचलित न करना, ज्ञान को उसके साथ उपयोग न करने की स्थिति अभ्यास के बल पर से हो सकती है, वही अभ्यास होना जरूरी है। इसके लिए कैसे क्या प्रयत्न करना है, एक दृष्टांत। एक व्यक्ति गया, दो मिनट में समाप्त करता हूं। अच्छा नहीं, समय के अनुकूल ही करना है, बहुत ही सोचना पड़ता है, क्योंकि जिसी किसी के वस्तु को जब हम बिना पूछे लेते हैं तो चोरी का दोष आता है ना, तो दूसरों का समय को भी हम बिना पूछे लेंगे तो तब भी चोरी का आता है, क्योंकि दूसरों का समय अगला कार्यक्रम है, हम बिना पूछे लेंगे तो भी चोरी का दोष लगता है, समय की चोरी कहते हैं इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, हाँ अच्छा ठीक, क्षम्य है, ठीक है ठीक, लेकिन फिर भी अपना कॉन्शियस जो परमिट नहीं करता, जितना समय है उसके ऊपर काम करना जरूरी है।
जवाब भी बहुत अच्छा
है। एक व्यक्ति आत्मार्थी पुरुष सुख की प्राप्ति के लिए ढूंढते ढूंढते घर छोड़कर चला गया तो किसी जंगल में पहुंच गया। एक साधु पुरुष अपने पेड़ एक वृक्ष था उसके नीचे बैठ करके साधना कर रहे थे, करते करते शाम हो गया और लोग बैठे थे, सब चले गए, तो ये भी देखा कि बहुत लोग आते हैं तो मैं भी बैठूं, तो बैठ गया, रात भर बैठ गया, और सवेरे फिर लोग आए फिर बैठे, ऐसे ही चलते रहा, ये भी बैठ गया, तो सब लोग सब शाम हुआ तो सब जाते थे, सवेरे हुआ तो सब आते थे। तो इसने महाराज जी से पूछा, महाराज मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। क्यों? मुझे साधना करनी है, मुझे आत्मा को जानना है, और मुझे कुछ करना है, धर्म करना है, मैं कुछ नहीं जानता है, सिर्फ घर छोड़ा है इतना, और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, और यह मैं आपके साथ ही रहूँगा, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ देने के लिए समर्थ नहीं हूं, ना मेरे पास खाना है, ना मेरे पास पानी है, कुछ नहीं है, तुमको अपनी जिम्मेदारी के ऊपर रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, जो मिलेगा समय लो। ठीक है, बैठ गया। तो साधु के रहने का एक कुटिया था, घास की बनाया हुआ उसके, तो साधु उसके अंदर रहते थे, और ये सवेरे से शाम तक झाड़ू मारना और उसको उनको पानी ला के देना, सबका सेवा करता था। तो लेकिन एक दिन उसको मन में दुख हुआ, उस शिष्य को, कि रोज मैं इतना सेवा करता हूं लेकिन फिर भी मुझे कुटिया के बाहर बिठा करके अंदर दरवाजा बंद कर लेते हैं, और एक घंटे तक, सवेरे एक घंटे तक और शाम को एक घंटे तक मुझे बाहर बैठाते हैं, और मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतनी उनके साथ लगन से सेवा करता हूं, लेकिन मुझे बाहर क्यों बिठाते हैं, और ये अंदर बैठ करके करते क्या है, हुई प्रश्न अंदर। तो एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके थोड़ा सा घास हटा करके देखता है अंदर क्या करते हैं, इसकी सारे शंकाएं दूर हो गई, क्योंकि इसके पहले मन में था कहीं ऐसा ना हो इनके पास धन हो, शायद एकांत में गिनती करते हो, या कुछ खाते हो, या कुछ करते हो, ऐसी शंका होती हो सकती है, कि क्योंकि मनुष्य जो है ना कल्पना में निपुण है, मनुष्य जितना कल्पना में निपुण है उतना दूसरा कोई नहीं है, जो चाहे वो आकाश में भी बहुत बड़ा बिल्डिंग बना सकता है, दूसरी एक नया दुनिया को भी वो सृष्टि कर सकता है कल्पना में, इतना होशियार है मनुष्य। तो कर लिया, देखा सारे शंकाएं दूर हो गई। जब बाहर आए साधु तो उसने पूछा, महाराज आप अंदर बैठ करके क्या करते थे? हम सब आपकी भक्ति करते तो आप क्या करते थे? मैंने कहा मैं परमात्मा के ध्यान करता हूं। बहुत ठीक। तो उसने कहा कि मैं तो आपकी भक्ति के लिए आया था, तो आप किसी दूसरे की भक्ति कर रहे हैं, तो मैं भी आपका क्यों करूं, मैं भी उसी का करूं। तो उसने भी दूसरे बगल में कुटिया बना करके वहां रहा और उसी के अंदर रहा। परमात्मा की ध्यान करते करते उसके मन में एक दिन ऐसी शंका आ गई कि हमारे गुरु वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, मैं भी करता हूं, तो वो परमात्मा किसका करता है? तो तुरंत किससे पूछे, सीधे गुरु के पास गया, पूछा हम और आप दोनों परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो किसका करता है? अरे वो किसी का नहीं करता है, वो तो अपने ही करता है, फिर हम क्यों करें उसका, हम भी अपने ही करें। तो छोड़ दिया उसने और अपने ही आत्मा की भक्ति करने लगा। तो गुरु से पहले वो चला गया। ऐसे ही है कि उस शुद्धत्व की और शुद्ध परमात्मा की कल्पना एक बार हो जाता है और अनुभूति, क्या कहिए, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तो फिर जो है ना उसके लाइन लगती रहती है, फिर तो एक के बाद वो प्रमोशन होते रहता है। तो उस शुद्ध आत्मा की एक बार आचार्यों की वाणी के द्वारा या चर्चा से प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद जो है उसके पीछे लगें।